डॉक्टर क्रेग कीनर अधिनियम व्याख्यान 15 अधिनियम 13 से 15 2024 क्रेग कीनर और टेड हिल्डेब्रांट। यह एक्ट्स की पुस्तक पर अपने शिक्षण में डॉक्टर क्रेग कीनर हैं। यह सत्र 15 अधिनियम अध्याय 13 से 15 है। पिछले सत्र में हमने प्रेरितों के काम अध्याय 13 में पॉल के उपदेश और पिसिडियन अंताकिया के आराधनालय में उनके भाषण का परिचय दिया। अब हम वास्तव में भाषण की कुछ विशेषताओं को देखने जा रहे हैं, बस उनमें से कुछ का संक्षेप में परिचय करा रहे हैं। जैसा कि स्टीफन के भाषण के मामले में था, यह एक धर्म ग्रंथ की व्याख्या होगी जिसमें दिखाया जाएगा कि इसराइल का पूरा इतिहास कैसे पूरा होता है और यीशु के आने की ओर इशारा करता है। यह महत्वपूर्ण होने वाला है। याद रखें, ल्यूक अध्याय 24 में यीशु क्लियोपास और एम्मॉस के रास्ते पर चल रहे दूसरे व्यक्ति को धर्म ग्रंथों से अपने स्वयं के मिशन के बारे में बता रहे हैं। बाद में ल्यूक अध्याय 24 में वह अपने सभी शिष्यों को अपने मिशन के बारे में समझा रहा है, कैसे धर्मग्रंथ उसकी मृत्यु और पुनरुत्थान के बारे में बात करते हैं और सभी लोगों को अच्छी खबर घोषित करने के उनके मिशन के बारे में बताते हैं। और आप कहते हैं, अच्छा, काश मैं वहां होता। वह किस धर्मग्रंथ की बात कर रहे थे? ठीक है, मुझे लगता है कि ल्यूक को हमें ल्यूक अध्याय 24 में बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यह अधिनियमों के कुछ भाषणों में हमारे लिए सामने आया है। कुछ नमूने क्या थे और कुछ दृष्टिकोण क्या थे जो हमें यीशु को देखने में सक्षम बनाते हैं पुराने नियम में। अध्याय 13 श्लोक 17 से 19 तक वह 450 वर्षों की बात करता है। ऐसा तब होता है जब कोई ओवरलैपिंग की अनुमति दिए बिना सभी संख्याओं को जोड़ता है। ऐतिहासिक रूप से ओवरलैपिंग हो सकती है, लेकिन वह सिर्फ पाठ के साथ जा रहा है। वह पाठ्य लोगों से बात कर रहा है जो पुरातत्व और वह सब नहीं जानते जो वह भी नहीं जानता होगा। अध्याय 13 श्लोक 27 से 29 तक जिन लोगों ने यीशु की निंदा की वे ऐसा करके धर्मग्रंथों को पूरा कर रहे थे। यहाँ फिर से हमारे पास कुछ ऐसा है जिसे हम अक्सर ल्यूकेट्स में एक विषय के रूप में देखते हैं। आप इसे पहले ही अध्याय 2 की आयत 23 में देख सकते हैं जहाँ उन्होंने यीशु को मार डाला था। उन्होंने अधर्मी लोगों इन अन्य जातियों के हाथों का उपयोग किया, लेकिन यह परमेश्वर की योजना को पूरा कर रहा था जो पूर्व निर्धारित थी। इसलिए ईश्वर इतना संप्रभु है कि वह अपने उद्देश्यों और अपनी योजना को प्राप्त करने के लिए मानवीय अवज्ञा के माध्यम से भी काम कर सकता है। उनका इरादा बुराई के लिए था, लेकिन भगवान का इरादा अच्छाई के लिए था। और कभी कभी वह हमारे जीवन में ऐसा करेगा। लोग बुराई के लिए काम करेंगे, लेकिन भगवान का एक उद्देश्य है जहां वह अच्छाई के लिए काम कर सकता है। ऐसा नहीं है कि भगवान ने उन्हें कुछ बुरा करने के लिए कहा है, बल्कि भगवान के पास हमारे शाश्वत अच्छे के लिए काम करने के अपने तरीके हैं, और अक्सर हमारे जीवन के दौरान भी वह अच्छे के लिए काम करते हैं, भले ही हम इसे हमेशा उस समय नहीं देखते हैं, लेकिन वह भरोसेमंद है। इसलिए उन्होंने उसकी निंदा करने में धर्मग्रंथों को पूरा किया, विशेष रूप से ल्यूक यशाया अध्याय 53 के बारे में सोच रहा होगा जिसे प्रेरितों के काम अध्याय 8 में उद्धृत किया गया है। इसके अलावा भजन 22 और भजन 69 जैसे धर्मी पीड़ित के भजन भी हैं। ये भजन सुसमाचार और अधिनियमों में उद्धृत किए गए हैं। 13:33 में वह भजन 2 और श्लोक 7 का हवाला देता है जिसका उल्लेख ल्यूक अध्याय 3 में पहले से ही स्वर्ग से आई आवाज में किया जा सकता है। भजन 2:7 कहता है कि यह परमेश्वर का पुत्र है। आज तुम मेरे बेटे हो, मैंने तुम्हें जन्म दिया है। यह एक सिंहासनारोहण स्तोत्र था। आपने कभी कभी प्राचीन निकट पूर्व में एक दिव्य राजा की जय जयकार करने के तरीके के रूप में इस तरह के आदेश दिए हैं। खैर, यहूदी लोगों ने अपने राजा को दैवीय नहीं कहा, लेकिन उन्होंने यह माना कि उनके राजा को ईश्वर द्वारा स्थापित किया गया था। देर सी स्क्रॉल्स ने इस स्तोत्र को मसीहा के सिंहासनारोहण के लिए लागू किया, वह परम राजा जिसके अधीन राष्ट्र समर्पण करेंगे, जो कि स्तोत्र दो में हमारे पास जो कुछ है उसकी पूर्ण अभिव्यक्ति है। दाऊद का शाश्वत राजवंश अंततः पूरा हुआ, विशेषकर यीशु के मंत्रालय में। 13:34 में वह यशायाह 55:3 को उद्धृत करता है, जिसे आप एक साथ जोड़ सकते हैं क्योंकि वह दाऊद के पुत्र के बारे में एक भजन है। इसका संबंध डेविड से किए गए वादे से भी है। यशायाह 55:3 में यशायाह की भविष्य की आशा डेविड से किए गए वादे से जुड़ी है। वह 4 को नहीं बल्कि यशायाह 55:4 को उद्धृत करता है, जो निस्संदेह पॉल को पता होगा और शायद ल्यूक को पता होगा और शायद ल्यूक के कुछ दर्शकों को भी याद होगा। यशायाह 55:4 अन्य जातियों के लिए आशा के बारे में बात करता है, जो वास्तव में इस अध्याय में जल्द ही आशा करेंगे। वह श्लोक 35-37 में आगे बढ़ता है। यशायाह 55:3 में पवित्र के बारे में बात करते हुए वह बेजेरा शावुआ के यहूदी व्याख्यात्मक सिद्धांत के अनुसार भजन 16:10 का हवाला देता है, जहां आप एक सामान्य कुंजी शब्द के आधार पर ग्रंथों को एक साथ जोड़ सकते हैं। आराधनालय के उपदेश में उनके श्रोता इसकी सराहना करेंगे। यीशु के पुनरुत्थान के संदर्भ में भजन 16 को पहले ही प्रेरितों के काम अध्याय 2 में उद्धृत किया जा चुका है। इसलिए हम धर्मग्रंथ पर आधारित प्रेरितिक संदेश में एक प्रकार की निरंतरता देखते हैं। भजन 16 गारंटी देता है कि दाऊद की प्रतिज्ञा का उद्देश्य कभी सड़ेगा नहीं। ठीक है, आप अध्याय 2 श्लोक 25-28 में पीछे मुड़कर देखें, पीटर बताते हैं, ठीक है, हम जानते हैं कि डेविड न केवल मर गया बल्कि वह विघटित भी हो गया। उनकी कब्र आज भी हमारे पास है। यरूशलेम में कुछ कब्रें थीं जिनके बारे में कम से कम यह सोचा जाता था कि ये सही कब्रें हैं, जो पहली शताब्दी में ज्ञात थीं, जिसके बारे में जोसेफस बात करता है। पुरातात्विक दृष्टि से हमारे पास कुछ कब्रें हैं, लेकिन जो भी हो उनकी कब्र आज भी हमारे पास है। हर कोई जानता था कि डेविड मर गया, तो वह कह रहा है कि यह वस्तुतः स्वयं डेविड का संदर्भ नहीं है, बल्कि यह डेविड के वंशज डेविडिक मसीहा का संदर्भ दे रहा है। आप जानते हैं, यहेजकेल भविष्य में डेविड के शासन करने के बारे में बात कर सकता है, लेकिन यशायाह की भाषा में यह डेविड का पुत्र डेविड का वंशज है। और 13:41 में आगे बढ़ते हुए यहाँ वह हबक्कूक 1:05 से उद्धरण देता है और एक चेतावनी देता है। उन लोगों की तरह मत बनो जो इस संदेश पर ध्यान नहीं देते। और हबक्कूक 1:05 संदर्भ में 1:06 में कसदियों के अधीन आसन्न न्याय के बारे में बात कर रहा है। वह संदर्भ में कहते हैं कि यह आसन्न निर्णय है। इसलिए यदि आप इस पर ध्यान देने में विफल रहते हैं तो आप परमेश्वर के न्याय के अधीन होंगे। दिलचस्प बात यह है कि हबक्कूक इस बारे में बात करता है कि कैसे केवल धर्मी अवशेष ही विश्वास के द्वारा टिकेगा और जीवित रहेगा, हबक्कूक 2:4। यहाँ सिद्धांत को अंत के निर्णय पर लागू किया गया था। वह यहाँ हबक्कूक 2:04 को उद्धृत नहीं करता है, लेकिन हम पॉल के स्वयं के पत्रों से जानते हैं कि उसे हबक्कूक 2:04 को उद्धृत करना पसंद था। इसलिए हम यहां उनके संदेश का केवल सारांश प्राप्त कर रहे हैं। लेकिन जब पॉल यहां हबक्कूक 1:05 के बारे में बात कर रहा है तो संभवतः उसके दिमाग में बड़ा संदर्भ है, और उस अवसर पर उन्होंने उस संदर्भ की और भी व्याख्या की होगी। छंद 42 और 43 में हम देखते हैं कि गैर यहूदी ईश्वर भयभीत लोग उसे खुशी से सुनते हैं, क्योंकि ठीक है, पॉल उन्हें अच्छी खबर की घोषणा कर रहा है और यह अच्छी खबर है जो उनके लिए भी अच्छी खबर है। कई अन्य जाति बड़ी रुचि के साथ आराधनालयों में चढ़े। यह चौथी शताब्दी के अंत तक भी चल रहा था। जॉन क्राइसोस्टोम इसकी शिकायत करते हैं, आप वह कर सकते हैं जो कुछ लोग कर रहे थे, जिसमें आराधनालय में जाना और चर्च में भी जाना शामिल था, लेकिन वह शिकायत कर रहा था क्योंकि कुछ लोग किसी ऐसी शिक्षा से प्रभावित हो रहे थे जो ईसाई शिक्षा के विपरीत थी। किसी भी स्थिति में 13:44 में आपके पास बहुत सारे लोग आ रहे हैं, और अगले सप्ताह कुछ अतिशयोक्ति के साथ बोलना, क्योंकि वे सभी एक आराधनालय में या यहाँ तक कि आराधनालय के ठीक सामने सभी फिट नहीं होते, लेकिन ल्यूक कुछ अतिशयोक्ति के साथ कहते हैं कि मूल रूप से पूरा शहर दिखाई देता है। खैर, जब प्रसिद्ध वक्ता, उदाहरण के लिए पहली शताब्दी के अंत में दूसरी शताब्दी की शुरुआत में डियो क्राइसोस्टोम, जब वे शहर में आते थे तो शहर के अधिकांश लोग उस व्यक्ति को सुनने के लिए बाहर आते थे, और पॉल ने वास्तव में एक महान संदेश की घोषणा की है। आराधनालय में नए वक्ता के बारे में बात तेजी से फैल जाएगी। गैर यहूदी भाषा में उन्हें एक महान वक्ता और वक्ता या एक महान दार्शनिक के रूप में जाना जाएगा, क्योंकि वह उस तरह का संदेश ला रहे हैं जिसकी दार्शनिकों को परवाह है। कभी कभी वे ब्रह्मांड संबंधी मुद्दों के बारे में बात करते थे, लेकिन वे नैतिक मुद्दों आदि के बारे में भी बात करते थे। धर्म का प्राथमिक संबंध नैतिकता से नहीं था, यह ग्रीको रोमन दुनिया में अनुष्ठान से संबंधित था, लेकिन फिर भी वे पॉल को सुनने के लिए बाहर आए। और पॉल 1347 में यशायाह 49:6 का हवाला देता है। खैर, यशायाह के संदर्भ में नौकर 49:3-4 में नौकर इज़राइल था। यह स्पष्ट रूप से कहता है कि लेकिन फिर 49:5-7 में यह वह है जो नौकर के मिशन को पूरा करता है और इज़राइल के लिए कष्ट उठाता है, जैसा कि यशायाह 52:13-53:12 में है, जैसा कि हमने अधिनियम अध्याय 8 में देखा था। लेकिन यहाँ पॉल इसे यीशु पर लागू नहीं कर रहा है, वह इसे खुद पर लागू कर रहा है। नौकर के बड़े मिशन के आलोक में यह समझ में आता है। नौकर इसराइल था, यह परमेश्वर के लोग थे। यशायाह 42:18-19, इसराइल ने उस मिशन को पूरा नहीं किया। तो इसराइल के भीतर एक है जो मिशन को पूरा करता है, लेकिन यह अभी भी भगवान के लोगों के लिए उपयुक्त मिशन है और इसराइल के भीतर धर्मी अवशेषों के लिए उपयुक्त मिशन है। और इसलिए यीशु के अनुयायी के रूप में पॉल ऐसा करता है। और इस पाठ का उल्लेख वास्तव में अधिनियम 1:8 में किया गया था, जहां अच्छी खबर पृथ्वी के अंत तक जाएगी। तो पॉल इस बारे में उद्धृत कर सकता है कि हमें पृथ्वी के छोर तक ज्योति के रूप में भेजा गया है। यही आज विश्वासियों का भी मिशन है, उन सभी का जो इसराइल के असली राजा और राष्ट्रों के राजा यीशु का अनुसरण करते हैं। 13:48-49, यहूदी लोग इब्राहिम के वंश के आधार पर मुक्ति के लिए पूर्व निर्धारित थे। यह एक सामान्य यहूदी विश्वास था, लेकिन यहाँ कई अन्य जातियों को जीवन के लिए दीक्षित किया गया है। यह उनके कुछ यहूदी श्रोताओं के लिए चौंकाने वाला होगा। यह पहले से ही यशायाह 49:6 में राष्ट्रों के लिए इस प्रकाश के साथ निहित था, लेकिन अब हमारे पास पॉल के कुछ यहूदी श्रोता इस बिंदु पर उससे अधिक परेशान हो रहे हैं। 13:50 में कई प्रमुख महिलाएं यहूदी धर्म में रुचि रखती थीं। कभी कभी इससे सुसमाचार के प्रसार में मदद मिलती थी, जैसे प्रेरितों के काम 16 में, और कभी कभी इससे दुख होता था अगर स्थानीय यहूदी समुदाय प्रेरितों के खिलाफ होता था। खैर, यहाँ ये प्रमुख महिलाएं अभिजात वर्ग से संबंधित हैं। किसी समुदाय में अधिकांश राजनीतिक शक्ति स्थानीय अभिजात वर्ग के पास होती थी। उनसे डिक्यूरियंस आए। स्थानीय परिषदों में ये वे लोग थे जो शहर पर नियंत्रण रखते थे। इसलिए स्थानीय अभिजात वर्ग के सदस्यों का विरोध किसी को शहर से बाहर निकाल सकता है। उनका अधिकार पूर्णतः स्थानीय था। आप अगले शहर में गए, वहां वे पिछले शहर के लोग आपके खिलाफ कुछ नहीं कर सकते थे। आपको बस उनके अधिकार क्षेत्र की सीमा से बचना होगा, जो कि पॉल और बरनबास को करना है। 13:51 में वे इकोनियम की ओर बढ़ते हैं। अब क्या ल्यूक ने पॉल से इनमें से कोई कहानी सुनी होगी? खैर, हम जानते हैं कि पॉल ने अपने चर्चों में और संभवतः अपनी यात्राओं में बरनबास के बारे में बात की थी। वह गलातियों 2 और 1 कुरिन्थियों 9 दोनों में बरनबास के बारे में बोलता है, जैसे कि इन स्थानीय चर्चों में उसके श्रोताओं को पता होना चाहिए कि बरनबास कौन था। तो जाहिर है पॉल ने पहले भी लोगों को ये कहानियां सुनाई हैं, और जब तक ल्यूक पॉल के साथ रहा उसने निश्चित रूप से उन्हें सुना होगा। 13:51 में इकोनियम उसी सड़क पर लगभग 85 मील या 135 किलोमीटर पूर्व में था, पिसिडियन एंटीओक से वाया सेबस्ट। इलाका उबड़ खाबड़ था। इस सड़क के अलावा कोई अन्य मार्ग नहीं था जिसे आप ले सकते थे। तो हम जानते हैं कि पॉल ने इस बिंदु पर यह रास्ता अपनाया। यह लगभग 4 दिन की पैदल यात्रा थी, और जब वे पिसिडियन अंताकिया से निकलते हैं तो वे अपने पैरों से धूल झाड़ते हैं। जब यहूदी लोग पवित्र भूमि पर लौटते थे या कभी कभी जब वे मंदिर में आते थे तो वे अपने पैरों से अपवित्र धूल को झाड़ सकते थे। यही कारण है कि लूका 10:10-12 में यीशु कहते हैं, जब तुम गलील के नगरों परमेश्वर के अपने लोगों के नगरों में जाओ और राज्य का सुसमाचार सुनाओ और वे न सुने तो अपने पैरों की धूल झाड़ दो, इसे अपवित्र मानो। उनके साथ वैसा ही व्यवहार करो जैसा तुम अन्य जातियों के साथ करते हो, क्योंकि वे वाचा को अस्वीकार कर रहे हैं। और फिर वह कहता है, उस दिन इन गलील नगरों की अपेक्षा सदोम और अमोरा की दशा अधिक सहने योग्य होगी। इसलिए चाहे लोग यहूदी हो या अन्य जाति, आप यह कहते हुए अपने पैरों से धूल झाड़ते हैं कि यह अपवित्र क्षेत्र है। प्राचीन मध्य पूर्व में किसी व्यक्ति को अपनी एड़ी दिखाना भी अपमान माना जाता था, और वह भी इसमें भूमिका निभा सकता है। तो वे 4 दिनों तक चलते हैं, वे इकोनियम पहुंचते हैं और अनुमान लगाते हैं क्या? इकोनियम में भी उनका विरोध होने वाला है। अब हम इकोनियम 14:04 में उनके मंत्रालय के बारे में पढ़ते हैं। वे फ्रीजियन बोली बोलते थे। ठीक है, फिर से अगर मैं इसे उसी तरह उच्चारित करूं जैसे वे पहले करते थे तो यह फ्रीगिया था, लेकिन हम फ्रीगिया कहते हैं। फ्रीजियन बोली, लेकिन वे ग्रीक भी बोलते थे। वह उनकी दूसरी भाषा होती। जरूरत पड़ने पर पॉल दुभाषियों का उपयोग कर सकता था। हमें यह धारणा 14:11 और 14 से मिलती है। कभी कभी आप दूसरों की तुलना में दुभाषियों के साथ बेहतर स्थिति में होते हैं। मुझे पता है कि जब फ्रेंच में मेरा दुभाषिया गलतियां करेगा तो मैं आमतौर पर उन्हें पकड़ सकता हूं। जब हौसा में मेरा दुभाषिया गलतियां करता था तो मुझे पता था कि उन्होंने गलती की है, क्योंकि लोग मुझे डरावनी दृष्टि से देख रहे थे, और मैं अपने दुभाषिया की ओर मुड़ूंगा और कहूंगा, आपने क्या कहा, मैंने क्या कहा। और आगे की पंक्ति में कोई व्यक्ति जो अंग्रेजी भी जानता था दुभाषिया से बात करेगा। वे आगे पीछे जाते थे और कहते थे, ओह, यह शब्द है जो हमेशा एक ऐसा शब्द था जो या तो अंग्रेजी में या हौसा में, यह एक ऐसा शब्द था जो दूसरे शब्द की तरह लगता था। और फिर हर कोई हंसेगा। इसलिए जरूरत पड़ने पर उन्होंने दुभाषियों का इस्तेमाल किया। वह कोई समस्या नहीं है। यदि लोग ग्रीक में बात करते हैं तो वे समझ जाएंगे, लेकिन स्थानीय फ्रीजियन बोली शायद वे नहीं समझेंगे। आइकोनियम में वे फिर से अधिकांश स्थानों की तरह ही स्थानीय देवताओं की पूजा करते थे, लेकिन वे विशेष रूप से सम्राट और फ्रीजियन मातृ देवी की पूजा करते थे, जिन्हें दुनिया भर में जाना जाता था। जैसा कि आप जानते हैं, यह मातृ देवी विशेष रूप से फ्रीगिया से जुड़ी हुई थी, हालांकि विशेष रूप से नहीं। बाद में इकोनियम एशिया माइनर में ईसाई धर्म का एक प्रमुख केंद्र बन गया, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि जब वे पहली बार इकोनियम में सुसमाचार का प्रचार कर रहे थे तो उनके लिए यह आसान नहीं था। अध्याय 14 और पद 5 में नगर मजिस्ट्रेट गड़बड़ी को दबाने के लिए जो भी आवश्यक था वह कर सकते थे। इसका मतलब था उन पर प्रतिबंध लगाना, न कि उन्हें मारना। वे ऐसा नहीं कर सकते थे। सिटी मैजिस्ट्रेट उन पर पथराव नहीं कर सकते थे। वह भीड़ की कार्रवाई होगी। लेकिन उन्हें एहसास हुआ कि कुछ लोग विपक्ष बहुत कठोर हो जाते हैं। यीशु ने कहा, मैथ्यू 10:23, हालांकि ल्यूक ने उस कहावत को रिकॉर्ड नहीं किया है, लेकिन यह एक ऐसे संदर्भ में है जहां ल्यूक ने कुछ सामग्री को रिकॉर्ड किया है, इसलिए ल्यूक को इसके बारे में अच्छी तरह से पता हो सकता है। यीशु ने कहा, वे तुम्हें एक नगर में सताते हैं, तुम दूसरे नगर में भाग जाओ। तो वे लाइकाओनिया के शहरों में प्रचार कर रहे हैं, 14:6-7। लाइकाओनिया के शहर। आइकोनियम सांस्कृतिक रूप से फ्रीगिया में था, लेकिन प्राचीन लेखकों ने कभी कभी इसे लाइकाओनिया में शामिल किया था। लाइकाओनिया में लिस्ट्रा और डर्बे शामिल थे, इसलिए अलग अलग लेखकों ने सीमाओं को अलग अलग तरीकों से वर्गीकृत किया। वे भाग गए। विवेक कभी कभी वीरता का बेहतर हिस्सा होता है, या इसे अलग तरीके से कहें तो हमें अपने जीवन को अपने सम्मान से ऊपर महत्व देने की आवश्यकता है, ताकि यदि संभव हो तो हम अपना मंत्रालय जारी रख सकें। पॉल यरूशलेम में ऐसा नहीं करना चाहता था। उसके पास ऐसे दोस्त होने चाहिए जो उसे ऐसा करने के लिए प्रेरित करें। कुछ अन्य स्थानों पर उसके मित्र हैं जो उससे ऐसा करने का आग्रह करते हैं, लेकिन यहां इसका कोई मतलब नहीं है। वे आगे बढ़ते हैं, और इसलिए वह अध्याय 14:8 से अध्याय 20 के पहले भाग तक लुस्त्रा में उपदेश देता है। लिस्त्रा आधी सदी से रोमन उपनिवेश रहा है। उन्होंने स्थानीय संस्कृति पर जोर दिया, और क्योंकि यह प्रतिष्ठित थी इसलिए रोमन पद्धति भी थी, और वे पिसिडियन एंटियोक के लिए एक सहयोगी शहर थे। भले ही वे लगभग 100 मील दूर थे, उनके बीच एक विशेष संबंध था। वे दोनों रोमन उपनिवेश थे, और इसलिए उन्होंने खुद को संबंधित के रूप में देखा, क्षेत्र के ग्रीक शहरों से अलग, ऐसे शहर जो खुद को अधिक ग्रीक के रूप में देखते थे, जो कि पूर्वी भूमध्य सागर की प्रमुख संस्कृति, शहरी संस्कृति थी। खुला उपदेश सुसमाचार का संचार करने का एकमात्र तरीका नहीं था, लेकिन यहाँ उनके पास बहुत अधिक स्थानीय संबंध नहीं थे, इसलिए उन्होंने बस उपदेश देना शुरू कर दिया। लेकिन यह कुछ ऐसा था जो उनके लिए उपलब्ध था। संभ्रांत दार्शनिक अक्सर धनी संरक्षकों की सेवा करते थे या हॉल में व्याख्यान देते थे, लेकिन अन्य जो इतने संभ्रांत नहीं थे, वे केवल बाजारों में प्रचार करते थे। इसलिए लोग कभी कभी बाजारों में लोगों से बोलने की अपेक्षा करते हैं। वास्तव में डियोक्रेस प्रणाली ने उन दार्शनिकों की आलोचना की जिन्होंने अपने व्याख्यान कक्षा के लिए आरक्षित रखे थे। पॉल के पत्रों से पता चलता है कि उन्होंने इस प्रकार के कुछ दार्शनिक आदर्श साझा किए थे। वह कभी कभी ग्रीको रोमन संस्कृति से परिचित दार्शनिक तर्कों आदि का प्रयोग करते थे। इसलिए यह आश्चर्य की बात नहीं होगी अगर वह कहें, ठीक है, लोग इस बाजार में प्रचार कर सकते हैं, हम यह करने जा रहे हैं। लेकिन कुछ विवाद था, लेकिन विरोधियों द्वारा छेड़े गए विवाद ने ध्यान खींचा होगा। कुछ लोगों ने कहा है कि सारा प्रचार अच्छा प्रचार है। यदि कोई आपकी आलोचना कर रहा है तो कम से कम इससे आपके काम की ओर ध्यान आकर्षित होगा और अधिक लोगों को आपके काम के बारे में पता चलेगा। मुझे यकीन नहीं है कि सभी प्रचार अच्छा प्रचार है, लेकिन हमें जो मिलता है हम उसका सर्वोत्तम उपयोग करते हैं। तो 14 श्लोक 9 से 11 में पॉल को लगता है कि किसी को चंगा होने का विश्वास है। वह कहता है उसे यीशु के नाम पर चंगा होने की आज्ञा देता है और वह आदमी उछलकर चंगा हो जाता है। वह चलने में सक्षम है। यहां ल्यूक द्वारा उपयोग की जाने वाली कुछ भाषाएं उस भाषा से बहुत निकटता से संबंधित हैं जो ल्यूक ने अधिनियम अध्याय 3 में विकलांग व्यक्ति के लिए उपयोग की है। दोनों ही मामलों में ईश्वर अपने एक प्रतिनिधि के माध्यम से कार्य कर रहा है। पीटर और जेरूसलम चर्च के माध्यम से भगवान जो करते हैं और पॉल के माध्यम से भगवान जो करते हैं और गैर यहूदी मिशन में शामिल होते हैं, उनके बीच हमारे पास बहुत सारी समानताएं हैं। और यह अध्याय 8 में एक विकलांग व्यक्ति के उपचार से भी मेल खाता है। क्या यह ल्यूक के सुसमाचार 8 या 9 का है? और हमारे पास संभवतः यशायाह अध्याय 35 को उद्घाटित करने वाली भाषा भी है, जबकि सुसमाचार में यह भविष्य का पूर्वाभास है, ल्यूक अध्याय 7। लेकिन यशायाह 35 में यह इस बारे में बात करता है कि युगांत संबंधी पुनर्स्थापन के समय विकलांग कैसे खुशी से उछलेंगे और अन्य प्रकार के उपचार होंगे। तो यहाँ फिर से भगवान की शक्ति जो भविष्य में अपने अंतिम तरीके से प्रकट होगी, वह पहले से ही इतिहास में प्रवेश कर रही है। यह पहले से ही काम पर है। खैर, फ्रीजियन इसे थोड़ा अलग तरीके से लेते हैं। वे इसे ईश्वर के वादा किए गए राज्य से लेकर उसके लोगों तक के इतिहास में प्रवेश के एक युगांतकारी संकेत के रूप में नहीं लेते हैं। वे इसे स्थानीय फ्रीजियन किंवदंती के संदर्भ में देखते हैं। ज़ियुस और हर्मीस फ्रीगिया में अपने क्षेत्र में आए थे और उन्हें अस्वीकार कर दिया गया था। बाउकस और फिलेमोन नाम के एक जोड़े को छोड़कर लोगों ने उनका आतिथ्य सत्कार नहीं किया था, और इसलिए बाउकस और फिलेमोन को छोड़कर बाकी फ्रीगिया बाढ़ में नष्ट हो गया। खैर, ये लाइकेनियन जो आंशिक रूप से लाइकियन हैं, लेकिन आंशिक रूप से फ्रीजियन संस्कृति हैं, वे फ्रीजियन संस्कृति को जानते हैं। वे वही गलती नहीं करने वाले हैं। और प्राचीन काल में चमत्कार कार्यकर्ताओं को कभी कभी देवताओं के रूप में समझा जाता था। और बेहतर होगा कि आप देवताओं का आतिथ्य सत्कार करें, क्योंकि इस बाढ़ के अलावा देवताओं का आतिथ्य न करने के बारे में बहुत सी कहानियां थीं जहां आप मुसीबत में पड़ गए। अन्य मामले भी थे। कुछ लोगों द्वारा डेमेटर को आतिथ्य नहीं दिखाया गया, उसने उन्हें सजा दी। और निस्संदेह हम पुराने नियम से जानते हैं, इब्रानियों के शब्दों में, कुछ लोगों ने इस बात से अनजान होकर स्वर्गदूतों का सत्कार किया, चाहे वह लूत हो चाहे वह इब्राहिम हो। आपके पास तोबिट वगैरह की यहूदी अपोक्रिफल कहानी भी है, परंतु ये उसे देवताओं के रूप में ग्रहण करते हैं। गलातियों में पॉल वास्तव में लोगों द्वारा उसे ईश्वर के दूत के रूप में स्वीकार करने की बात करता है। खैर, वे उसकी पूजा करना चाहते हैं। अब कुछ लोगों ने फ्रीजियन परंपरा में बाउकस और फिलेमोन और ज़ियुस और हर्मीस के इस संकेत पर विवाद करते हुए कहा है, ठीक है, यह सिर्फ रोमन लेखक ओविड है, लेकिन ओविड विशेष रूप से इसे फ्रीगिया से जोड़ता है। ओविड इससे काफी पहले ऑगस्टस के समय में लिख रहे थे। दरअसल जब मैं एक युवा ईसाई के रूप में पहली बार एक्ट्स पढ़ रहा था तो मैं अपनी पृष्ठभूमि के कारण ग्रीक पौराणिक कथाओं को जानता था। मैं इसे बाइबल से कहीं बेहतर जानता था। प्रेरितों के काम की पुस्तक के माध्यम से पहली बार मुझे बाउकस और फिलेमोन का संकेत मिला। मुझे लगता है कि यह बिल्कुल स्पष्ट है। तो स्थानीय लोगों ने यही सोचा, लेकिन वे अभी भी इस क्षेत्र में ज़ियूस और हर्मीस को बहुत महत्व देते थे और उन्होंने इस क्षेत्र में एक साथ उनकी पूजा की। हेमीस को ओलंपियनों का दूत माना जाता था। उनके पास आयरिस या एरिस भी था, लेकिन हर्मीस ओलंपियनों का दूत था। वह था जो अधिक प्रतिष्ठित ज़ियूस के लिए भाषण देता था। अन्य कहानियों में ज़ियूस बहुत कम प्रतिष्ठित था। वह महिलाओं या लड़कों का पीछा कर रहा था, लेकिन हम ग्रीक पौराणिक कथाओं के बारे में हर तरह की बुरी बातें कह सकते हैं। दार्शनिकों ने वास्तव में कभी कभी उन कहानियों को रूपक बनाकर और ज़ियूस को किसी चीज का प्रतीक बनाकर इससे बचने की कोशिश की, लेकिन किसी भी मामले में हर्मीस दिव्य दूत था। तो पॉल बोल रहा है, वे उसकी पहचान हर्मीस से करते हैं और इसलिए वे बरनबास को ज़ियूस मानते हैं। बलि चढ़ाने से पहले जानवरों को अक्सर मालाओं से सजाया जाता था और मंदिर का एक याजक नगर के फाटक के बाहर मालाएं पहनाए हुए एक बैल को लाता है, और बैल सचमुच महंगा था। तो यह एक बड़ा बलिदान होने जा रहा है। लिस्ट्रा के नागरिक लैटिन भाषा बोलते थे। यह अब एक रोमन उपनिवेश था, लेकिन यह पूरे क्षेत्र के लिए एक बाजार शहर भी था। तो एक स्थानीय भाषा थी। लोग ग्रीक समझते होंगे, लेकिन वे एक दूसरे से स्थानीय भाषा में बात करते होंगे। यह ऐसा है जैसे जब मैं और मेरी पत्नी अफ्रीका के किसी फ्रांसीसी भाषी देश में हो तो वह स्वाभाविक रूप से लोगों से फ्रांसीसी भाषा बोलेगी। यदि यह उसका अपना क्षेत्र है जहां वे कुछ स्थानीय भाषाएं बोलते हैं तो वह उनके साथ उन भाषाओं में बात करेगी। और मैं बहुत सारे शब्द नहीं जानता, लेकिन फिर वह मेरी ओर मुड़ेगी और मुझसे अंग्रेजी में या कभी कभी फ्रेंच में बात करेगी अगर यह बहुत जटिल फ्रेंच न हो। अध्याय 14 श्लोक 15 और 16। पॉल स्पष्ट रूप से पूजा को अस्वीकार करता है। पॉल और बरनबास ने पूजा अस्वीकार कर दी। जैसा कि पतरस ने कहा, आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि यह हमारी अपनी शक्तियां पवित्रता से है। अधिनियम अध्याय 3 और पद 12। प्रेरितों के काम अध्याय 28 में उन्होंने यह भी सोचा कि पॉल एक भगवान था। एक्ट्स से ऐसा कोई संकेत नहीं मिलता कि उसे उस समय इसके बारे में पता था। प्रेरितों के काम अध्याय 10 में जब कुर्नेलियुस उसके सामने झुकता है तो पतरस ने आदर को अस्वीकार कर दिया। यह सब साइमन के साथ विरोधाभास है जिसने अधिनियम अध्याय 8 में ईश्वर की महान शक्ति होने का दावा किया था। यह विशेष रूप से अधिनियम 12, 22 और 23 में अग्रिप्पा आय के विपरीत है जब उसे एक भगवान के रूप में सम्मानित किया जाता है और वह दिव्य पूजा स्वीकार करता है और उसे मार दिया जाता है। खैर, पॉल उस भाषा में जवाब देता है जो वास्तव में बाइबल आधारित है। संभवतः यहीं से उसे अपना धर्मशास्त्र प्राप्त होता है ना? लेकिन वह उन शब्दों में जवाब देते हैं जिन्हें अनातोलियन किसान समझ सकते हैं। वह उस ईश्वर के बारे में बात करता है जो प्रकृति पर शासन करता है। यहूदी धर्मशास्त्रियों ने सर्वोच्च ईश्वर के बारे में दार्शनिकों की शिक्षाओं का इस्तेमाल किया जो यहूदियों को मूर्तियों की बुतपरस्त पूजा के विपरीत लगा। दार्शनिक सदैव सहमत नहीं थे। कई दार्शनिकों ने महसूस किया कि किसी देवता पर अपनी श्रद्धा केंद्रित करने के लिए मूर्तियों का उपयोग स्वीकार्य था, और अक्सर इसी तरह से वे उन मूर्तियों को समझते थे। यहूदी लोग सहमत नहीं थे और पॉल सहमत नहीं थे। लेकिन यहूदी धर्म प्रचारकों ने स्थानीय शिक्षाओं या बुतपरस्त संस्कृति की शिक्षाओं का इस्तेमाल किया। उनमें से सर्वश्रेष्ठ लोग अपनी बात संप्रेषित करने के लिए उनका उपयोग करेंगे। और यहूदी लोगों ने कहा कि ईश्वर के पास अन्य जातियों के लिए निम्न नैतिक मानक थे, लेकिन अन्य जातियों के लिए भी मूर्ति पूजा की अनुमति नहीं थी और पॉल इसकी अनुमति नहीं देता है। फ्रीगिया से यह समझ में आता है कि यह अभी भी सामान्य फ्रीजियन संदर्भ में है, यहाँ तक कि लाइकाओनिया में भी फ्रीजियन संस्कृति फैल गई है। अत यह क्षेत्र उपजाऊ था। वे विशेष रूप से प्रजनन क्षमता प्रदान करने वाली देवी माँ की पूजा करते थे। और साथ ही स्टोइक दार्शनिकों ने कहा कि प्रकृति स्वयं सर्वोच्च ईश्वर के चरित्र की गवाही देती है। ऐसा सिर्फ स्टोइक्स ने ही नहीं कहा था और सिसरो ने भी ऐसा कहा था और अन्य भी, बल्कि विशेष रूप से स्टोइक्स इससे जुड़े थे और वे इस काल के सबसे लोकप्रिय दार्शनिक स्कूल थे। तो बहुत से लोग जानते थे कि स्टोइक्स ने ऐसा कहा था। लोग उन्हें बाजारों आदि में बोलते हुए सुनेंगे। ल्यूक के श्रोता इस संक्षिप्त भाषण सारांश में पॉल की बुद्धिमत्ता और संचार में उसकी बहुमुखी प्रतिभा की सराहना करेंगे, जो हमारे पास 1415 से 17 में है। खैर, भले ही वे एकेश्वरवाद का प्रचार कर रहे हों और भले ही भीड़ उन्हें पसंद करती हो, अक्सर हम प्राचीन ऐतिहासिक कार्यों में पढ़ते हैं कि भीड़ ने बहुत जल्दी अपनी राय बदल दी। दरअसल आज भी कभी कभी ऐसा होता है। वास्तव में प्रेरितों के काम अध्याय 19 में कहा गया है कि जो लोग वहां भीड़ में इकट्ठे हुए थे, उनमें से अधिकांश को यह भी नहीं पता था कि मामला क्या था, और यह भी नहीं पता था कि इसका पॉल से कोई लेना देना है। हमने प्राचीन काल में भीड़ के बारे में कभी कभी पढ़ा था। देवताओं को नकारना अपवित्र माना जाता था, इसलिए वे जादूगर के रूप में प्रकट होते थे। यदि वे देवता नहीं होते और वे कह रहे होते, ठीक है, कोई देवता नहीं है, और वे यह स्पष्ट करने के लिए कह रहे हैं कि हमारी पूजा मत करो, तो वे शायद जादूगरनी या जादूगर के रूप में प्रकट होते। लेकिन जो चीज वास्तव में समस्या पैदा करती है वह यह है कि कुछ यहूदी लोग एंटियोक, फिर से सिस्टर सिटी से आते हैं। वह लगभग 100 मील 160 किलोमीटर दूर है, परंतु लुस्त्रा और अंताकिया सहोदर नगर थे। वे आते हैं और भीड़ को भड़काते हैं और पॉल पर पथराव होता है। वह शहरी भीड़ हिंसा का सबसे आम रूप था। प्राचीन काल में ऐसा अक्सर होता था। हम इसके बारे में अक्सर प्राचीन स्रोतों में पढ़ते हैं। प्राचीन गलियों में पत्थर, टाइलें और सिलबट्टे आसानी से उपलब्ध होते थे और अक्सर इनका उपयोग इसके लिए किया जाता था। लोगों पर फेंकने के लिए छत से टाइलें फाड़ी जा सकती हैं। वह ईशनिंदा के लिए उपयुक्त सजा थी। लेकिन जैसा कि हमने पहले स्टीफन के मामले में उल्लेख किया था, यह भी अक्सर भगवान के लोगों के नेताओं के खिलाफ भगवान के अपने लोगों द्वारा धमकी दी गई थी। और यहाँ विडंबना यह है कि पॉल एकेश्वरवाद का प्रचार कर रहा है और साथ ही यहूदियों द्वारा उसकी निंदा की जा रही है। कार्य को समेकित करना, अध्याय 14, श्लोक 20-20 से श्लोक 28 तक। वे डर्बे की ओर बढ़ते हैं। अब डर्बे इस वाया सेबस्ट या ऑगस्टस हाईवे पर नहीं था। हम कह सकते हैं कि डर्बे लीक से हटकर था। यह लगभग 60 मील या 95 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में था, शायद कच्ची सड़क पर भी। यह लगभग 3 दिन की यात्रा थी। ग्रीक भाषा, इसमें ग्रीक भाषा और शायद ग्रीक संस्कृति थी, लेकिन इस बिंदु पर इसे ग्रीक पोलिस या ग्रीक शहर भी नहीं माना जाता था। वे सचमुच बहुत दूर होते जा रहे हैं। यह संभवतः अभी तक रोमन उपनिवेश क्लाउडियो डर्बे नहीं था जो यह बन गया, लेकिन वे जितना हो सके उतना दूर जा रहे हैं, क्योंकि आप जानते हैं भीड़ ने उनका पीछा किया था, या भीड़ में से कुछ लोगों ने उनके पीछे आने के लिए 100 मील तक उनका पीछा किया था। हालांकि 14:22 में जब वे उन शहरों से होकर वापस जा रहे थे जहां उन्होंने प्रचार किया था, वे डर्बे में प्रचार करते थे, वे लुस्त्रा वापस जाते थे, वे इकोनियम वापस जाते थे। ऐसी जगह पर ऐसा करना एक साहसी बात है जहां आप पर पथराव किया गया है। लेकिन भीड़ ऐसी नहीं है, आप जानते हैं, भीड़ की हिंसा एक पल में भड़क सकती है और लोगों को पता नहीं चलता कि क्या हो रहा है। कुछ गुस्सा शांत होने के बाद वे वापस जा रहे हैं और संभवत अगली बार वे एंटियोक शहर के आराधनालय में उपदेश नहीं देंगे। लेकिन वे वापस जाते हैं और यह नए विश्वासियों के लिए उनके संदेश का सारांश है, कुछ ऐसा जिसे नए विश्वासियों ने पहले ही देखा था, उन लोगों के जीवन में उदाहरण दिया जो उनके लिए सुसमाचार लाए थे। उनके उपदेश का सारांश यह है कि हमें बहुत क्लेश के माध्यम से परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना चाहिए। दूसरे शब्दों में, यीशु के लिए कष्ट उठाना उचित है और बेहतर होगा कि आप इसे करने के लिए तैयार रहें, जैसे पॉल और बरनबास कष्ट सहते रहे हैं। यहूदी लोगों को राज्य के आने से पहले तीव्र पीड़ा के दौर की उम्मीद थी, और पॉल कभी कभी इसके बारे में सामान्य तरीके से बात करते हैं, जरूरी नहीं कि यह अंतिम तीव्रता हो। हो सकता है कि 2 थिस्सलुनीकियों 2 में ऐसा हो, लेकिन रोमियो 8:22 की तरह वह बताता है कि वर्तमान में सृष्टि किस प्रकार कराह रही है और प्रसव पीड़ा से पीड़ित है। यहूदी लोग उस अंतिम अवधि को मसीहा और मसीहाई युग की जन्म पीड़ा, पॉल कहते हैं, एक नई रचना की जन्म पीड़ा के रूप में बात करते थे। इसलिए कभी कभी राहत और खुशी से पहले कष्ट होता है। यद्यपि अधिनियमों की पुस्तक में आदर्श रूप से ऐसे लोग थे जो अपने कष्टों में भी आनंद मनाने को तैयार थे, टर्टुलियन वास्तव में कुछ अन्य प्रारंभिक ईसाई मौखिक परंपरा से यीशु की इस तरह की कहावत को सुरक्षित रखते हैं। लेकिन वे स्थानीय चर्चों में बुजुर्गों की नियुक्ति भी करते हैं। नगरों और गांवों में बुजुर्ग शासन करते थे और न्याय करते थे। बुजुर्गों को भी सभास्थलों में जगह मिल सकती थी, हालांकि आम तौर पर वे गांवों में जिस तरह के कार्यालय रखते थे, उसके बजाय वे वहां एक धार्मिक कार्यालय भरते थे। आमतौर पर सभास्थलों के लिए संभवतः कई बुजुर्ग होंगे और वे व्यक्तियों के बजाय परिषद के रूप में कार्य कर सकते हैं। शीर्षक आमतौर पर सम्मान का आह्वान करता है। यदि कोई बुजुर्ग होता तो बुजुर्ग होने के कारण ही उसका आदर होता। यदि आप वृद्ध व्यक्ति नहीं थे और आप नेतृत्व की स्थिति में थे, जैसे 1 तीमुथियुस 4 में तीमुथियुस को प्रोत्साहित किया जाता है कि कोई भी उसकी जवानी का तिरस्कार न करे, लेकिन वह याद रखे जब बड़ों ने उस पर हाथ रखा था और उसे एक नेता नियुक्त किया गया था। लेकिन आम तौर पर यह पद वृद्ध लोगों या ऐसे लोगों को मिलता था जो निश्चित रूप से प्रतिभाशाली थे। यूनानी पूर्व में गेरूसिया का बहुत प्रभाव था। ये बड़ों से बने क्लब थे, और वास्तव में अलेक्जेंड्रिया में यहूदी समुदाय पर बुजुर्गों का शासन था, इसलिए वे उन्हें नियुक्त करते हैं, भले ही यह बिल्कुल हाल ही में हुआ है कि ये लोग यीशु में विश्वास करने लगे हैं। उन्हें किसी को रखना होगा, काम को चालू रखने और उस चीज को जीवित रखने के लिए उनके पास किसी प्रकार की संरचना होनी चाहिए। 1424 और 1425 अटालिया, जहां वे पिरगा के बाद जाते हैं। मोतियाबिंद के मुहाने पर अटालिया पैम्फिलिया का मुख्य बंदरगाह था, और संभवतः यहीं वे आए थे। यह स्पष्ट रूप से वह स्थान है जहां से वे रवाना होते हैं। 14:26 से 14:28 तक याद रखें कि प्रवासी यहूदी धर्म ने यहूदी धर्म को बढ़ावा दिया। वे क्षमा प्रार्थी थे, वे चाहते थे कि लोगों के मन में यहूदी धर्म के प्रति सकारात्मक छवि बनी रहे। उन्होंने धर्मांतरित लोगों का स्वागत किया, लेकिन उनके पास कोई ठोस मिशन आंदोलन नहीं था। तो यह एक विशेष कार्य था जो पॉल और बरनबास कर रहे थे। लेकिन आराधनालय समुदाय समाचार बताने वाले यात्रियों के माध्यम से संपर्क में रहे। इस स्थिति में वे वापस आते हैं और अपने गृह आधार पर रिपोर्ट करते हैं। वे ऐसा एक से अधिक बार करने जा रहे हैं। तो अंताकिया स्पष्ट रूप से उनका घरेलू आधार है। यह एक ऐसा आधार है जो यरूशलेम की तुलना में गैर यहूदी मिशन के प्रति अधिक सहानुभूति रखता है, और यह एजियन क्षेत्र के भी करीब है जहां वे मंत्री बनने जा रहे हैं। हालांकि अध्याय 15 में हमें एक विवाद का सामना करना पड़ता है, क्योंकि कुछ लोग अंताकिया आते हैं और ये लोग अंताकिया के लोगों से कहते हैं कि आपको बचाने के लिए खतना करना होगा। अब यह उससे भी अधिक कट्टरपंथी है जो हम गैलाटिया में लोगों को कहते हुए पाते हैं। गलाटिया में मूल रूप से ऐसा लगता है कि यह पॉल के गलाटियंस को लिखे पत्र में है, संभवतः दक्षिण गलाटिया का जिक्र है, शायद वह क्षेत्र जहां पॉल ने अधिनियम 13 में सेवा की थी। ठीक है, हाँ, अधिकांश अधिनियम 13 और अधिनियम 14। खैर, अधिनियम 14। वे आम तौर पर गलातिया में जो कह रहे थे वह यह था कि आपको पूरी तरह से धर्मी होने के लिए, भगवान के लोगों का हिस्सा बनने के लिए, वाचा का हिस्सा बनने के लिए, इब्राहिम के बच्चे होने के लिए खतना करना होगा। अधिकांश यहूदी लोगों का मानना था कि आपको सिर्फ एक धर्मी गैर यहूदी बनने की आवश्यकता है। यदि आप एक धर्मी अन्य जाति होते तो आप बच जाते। यदि आपने मूल प्रकार की आज्ञाओं का पालन किया है जो परमेश्वर ने नूह को दी थी, तो खून से सना हुआ भोजन मत खाओ, यौन अनैतिकता मत करो, लोगों को मत मारो और मूर्ति पूजा मत करो। अगर आप इस तरह की कुछ बुनियादी चीजें करेंगे तो आप बच जाएंगे। लेकिन वहां अधिक कठोर, अधिक रूढ़िवादी यहूदी थे जिन्होंने कहा कि आपको यहूदी धर्म में परिवर्तित होना होगा। और ये विशेष यहूदी ईसाई कम से कम इस बिंदु पर इस अधिक रूढ़िवादी दृष्टिकोण को व्यक्त करते प्रतीत होते हैं। हालांकि यहूदी समुदाय में किसी ने भी यह विश्वास नहीं किया कि अन्य जातियां बिना खतना के इसराइल का हिस्सा बन जाएंगी, वाचा के लोगों का हिस्सा बन जाएंगी। खैर, यह एक मुद्दा होने जा रहा है, क्योंकि याद रखें कि वे लंबे समय से अंताकिया में अन्य जातियों तक पहुंच रहे हैं, लेकिन वे उनका खतना नहीं कर रहे हैं। वे उनका वैसे ही स्वागत कर रहे हैं जैसे कोई आराधनालय करता है, लेकिन वे उनके साथ यीशु में अपने साथी विश्वासियों के रूप में व्यवहार कर रहे हैं। खैर, अब एक मुद्दा है। क्या यीशु में इन साथी विश्वासियों को अचानक खतना करने की आवश्यकता है? और यह एक मुद्दा बनने जा रहा है। पॉल ने उल्लेख नहीं किया है, क्षमा करें, ल्यूक ने टाइटस का उल्लेख नहीं किया है, जिसका उल्लेख अक्सर पॉल के पत्रों में किया गया है। उन्होंने उल्लेख किया कि जब वे इस विवाद को सुलझाने की कोशिश कर रहे थे तो पॉल टाइटस को अपने साथ यरूशलेम ले गया। टाइटस शायद अंताकिया से था, लेकिन टाइटस गलाटिया में मिशन से भी हो सकता है, क्योंकि गलाटियन पहले से ही जानते हैं कि वह कौन है। या तो वह या वह अंताकिया से पॉल के साथ आया होगा। किसी भी मामले में वह उनका कोई परिचित व्यक्ति है, और यरूशलेम में कुछ लोग टाइटस का खतना भी करना चाहते हैं। यह एक बड़ा मुद्दा बनने जा रहा है, और हम प्रेरितों के काम अध्याय 15 में इसे और अधिक विस्तार से देखने जा रहे हैं। तो आप जानते हैं, पॉल एक बहुत ही स्पष्टवादी नेता है। उसे और बरनबास को अन्य जातियों के बीच बहुत अच्छा अनुभव था। उन्होंने चिन्ह और चमत्कार देखे हैं। इसलिए बरनबास और पॉल को अंताकिया चर्च के प्रतिनिधियों के रूप में भेजा जाता है। टाइटस उनके साथ जाता है और शायद कुछ अन्य लोग भी। अच्छा, हाँ, कुछ अन्य लोग भी उनके साथ जाते हैं, और वे यरूशलेम की ओर जा रहे हैं। वे अन्य स्थानों पर रुक रहे हैं और वे उन शक्तिशाली कार्यों के बारे में बात कर रहे हैं जो परमेश्वर ने अन्य जातियों के बीच किए हैं, और हर कोई आनंद मना रहा है। हर कोई भगवान के काम का जश्न मना रहा है। लेकिन अब वे यरूशलेम आ रहे हैं, जहां ईसाई आंदोलन के सबसे रूढ़िवादी हिस्से का केंद्र स्थित है। और कभी कभी आज हमारे पास यह है, आप जानते हैं, जिन्हें अन्य लोगों के पास भेजा जाता है, वे देखते हैं कि भगवान कई अलग अलग तरीकों से काम करते हैं। लेकिन कभी कभी जो लोग केवल ईसाई आंदोलन की अपनी स्थानीय सांस्कृतिक अभिव्यक्ति को जानते हैं, वे अपनी स्थानीय अभिव्यक्ति के माध्यम से हर चीज का मूल्यांकन करते हैं। अब कभी कभी आपकी अपनी स्थानीय अभिव्यक्ति किसी और की तुलना में अधिक सही हो सकती है, लेकिन कभी कभी चीजों को करने के तरीके अलग अलग होते हैं। परमेश्वर का राज्य खाने पीने के बारे में नहीं है, पौल रोमियो 14:17 में कहता है, यह पवित्र आत्मा में धार्मिकता, शांति और आनंद के बारे में है। एक व्यक्ति एक दिन को दूसरे दिन से ऊपर मानता है और दूसरा हर दिन को एक जैसा मानता है। लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो केंद्रीय हैं और यही हमें भाई बहन बनाती हैं। और हम अन्य मुद्दों पर एक दूसरे का सम्मान कर सकते हैं। कुछ गौण मुद्दों पर हमारे बीच मतभेद हो सकता है, ठीक ठाक है, हम साथ मिलकर काम कर सकते हैं। लेकिन यहाँ प्रेरितों और बुजुर्गों अध्याय 15 और पद 2 आराधनालय जैसे चर्चों पर स्थानीय बुजुर्गों का शासन था, इसलिए प्रेरित उनके साथ मिलकर काम करेंगे क्योंकि प्रेरितों की भूमिका अधिक पारस्थानीय थी। जेरूसलम चर्च उनके लिए केंद्र था, लेकिन जेरूसलम चर्च में ही बुजुर्ग थे। आराधनालय मंदिर अधिकारियों और उनकी मातृभूमि के दूतों का सम्मान करते थे। यीशु में यहूदी विश्वासियों को भी एक विशेष दर्जा प्राप्त था। अन्यत्र लोग यह सुनना चाहते थे कि जेरूसलम चर्च क्या कहेगा। यह चर्च की एकता बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण था, लेकिन यह भी था कि यदि कोई मुख्यालय था तो वह यही था। अंताकिया गैर यहूदी मिशन का केंद्र हो सकता था, लेकिन 70 तक जब तक यरूशलेम नष्ट नहीं हो गया तब तक यरूशलेम चर्च का केंद्र था। तो 15:3-4, कुछ फरीसी बोल रहे थे। वे श्लोक 5 में बोलते हैं, लेकिन श्लोक 3 और 4 में जो प्रासंगिक है वह यह है कि पौल और बरनबास अन्य जातियों के बीच इन सभी चमत्कारों के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन कई सख्त फरीसियों का मानना था कि संकेत अपर्याप्त थे यदि वे पारंपरिक व्याख्या का खंडन करते हैं। पारंपरिक व्याख्या और फरीसियों की परंपराओं को प्राथमिकता दी गई। अब ईसाई फरीसी संकेतों के प्रति अधिक खुले हो सकते हैं। मेरा मतलब है, वे पहले से ही जानते हैं कि आत्मा उंडेली जा रही है। भगवान चमत्कार कर रहे हैं, लेकिन यह एक मुद्दा बनने जा रहा है। और फरीसियों ने पद 5 में अपनी शिकायत उठाई, और यह समझ में आता है कि यह सामने आया होगा। वे अब ल्यूक के सुसमाचार में फरीसियों की भूमिका निभा रहे हैं, लेकिन यह समझ में आता है कि यह सामने आएगा। अग्रिप्पा प्रथम को याद रखें, उसकी मृत्यु प्रेरितों के काम अध्याय 12 में हुई थी। वह केवल 41-44 तक यहूदिया में थे। वह इतने लंबे समय तक वहां नहीं थे, लेकिन एक यहूदी राजा के होने से, जो आंशिक रूप से हसमोनियन राजवंश मैकाबीज के वंशज थे, ने राष्ट्रवाद जगाया था। और आप इसे जोसेफस में भी देख सकते हैं। जब आप अधिनियम 21 तक पहुंचते हैं तो आप इसे भी देख सकते हैं। यह बाद में रोमन कुप्रशासन के कारण भी हुआ, जो कि अग्रिप्पा प्रथम के शासन के बिल्कुल विपरीत था, जो बहुत ही यहूदी समर्थक और यहूदी समर्थक था। इसलिए रूढ़िवादी राष्ट्रवाद बढ़ रहा है। आज हम अपनी संस्कृतियों में अक्सर ऐसी चीजें देखते हैं। हम अक्सर लोगों को प्रतिक्रियावादी होते हुए एक दिशा या दूसरे दिशा में आगे बढ़ते हुए या कुछ प्रकार के सांस्कृतिक मुद्दों के कारण ध्रुवीकृत होते हुए देखते हैं और अक्सर चर्च उससे प्रभावित होता है। आपके पास सांस्कृतिक रूप से बहुत रूढ़िवादी समूहों में ईसाई होंगे जो इस बात पर अड़े होंगे कि ऐसा करने का यही सही तरीका है। सांस्कृतिक रूप से कम रूढ़िवादी समुदाय के ईसाई इस बात पर अड़े हैं कि ऐसा करने का यही तरीका है, और कभी कभी यह झड़पें लाता है, खासकर जब हम एक संस्कृति के ईसाइयों को दूसरी संस्कृति के ईसाइयों के साथ बातचीत में ला रहे होते हैं। हमें वास्तव में एक दूसरे की बात सुननी होगी, और इस परिषद के साथ यही हुआ, लेकिन लोगों ने अपने मन की बात कही। उन्होंने पूछा कि क्या हो रहा है। तो फरीसियों के बीच विचारधारा के दो स्कूल थे, वहां शम्मी और हिलेलाइट थे। अब हिलेलाइट अन्य जातियों के प्रति अधिक उदार थे, लेकिन वे प्रभावशाली हो गए, विशेषकर 70 के बाद। 70 से पहले शमाइट अधिक प्रभावशाली थे, और संभवतः फरीसियों के बीच ऐसे लोग अधिक थे। मेरा मतलब है, यदि आप कानून का पालन करते हैं तो यह अच्छा है। वे जेम्स का सम्मान कर सकते थे, लेकिन अगर वे सोचते हैं कि आप कानून को कमजोर कर रहे हैं और अन्य जातियों के साथ संगति के मामले में, तो उन्हें यह पसंद नहीं आएगा। अब उस पाठ्यक्रम को उन लोगों के लिए वास्तव में अन्य जातियों के खिलाफ होने के मामले में बदनाम किया गया था जिन्होंने रोम के खिलाफ युद्ध के लिए बात की थी। रोम के विरुद्ध युद्ध की विफलता के बाद जो कुछ हुआ उसके बाद यह एक तरह से बदनाम हो गया था, लेकिन फरीसियों को उनकी धर्मप्रायणता, तोरा के ज्ञान के लिए सम्मान दिया जाता था, और संभवतः वे यरूशलेम चर्च में एक उच्च दर्जा रखते थे जिसे हम अध्याय 21 से जानते हैं। वहां के अधिकांश लोग कानून का पालन करते थे, यह उनकी संस्कृति का हिस्सा था, यह उनकी संस्कृति के भीतर एक अच्छा साक्ष्य था, क्योंकि जो लोग कानून का पालन नहीं करते थे वे भी कानून का पालन करने वाले लोगों का उतना ही सम्मान करते थे। अध्याय 15 श्लोक 6 से 11 में आपत्तियों पर पत्रस की प्रतिक्रिया। इससे हमें संघर्ष समाधान के लिए कुछ मॉडलों में भी मदद मिलती है। हम जानते हैं कि पॉल ने अपने मामले की पैरवी की, विशेषकर प्रेरितों गलातियों अध्याय 2 के समक्ष, लेकिन उसने संभवतः अधिनियम अध्याय 15 में इस सार्वजनिक गतिविधि का नेतृत्व नहीं किया, क्योंकि ऐसा होता वह व्यक्ति नहीं था जिस पर भरोसा किया गया था। इसलिए वह संकेतों और चमत्कारों के बारे में बात करता है, लेकिन पीटर, जो स्थानीय समुदाय में जाना जाता है, बोलता है। अन्य यहूदी समूहों का भी एक सामान्य सत्र होता था जिसमें सभी लोग एक साथ होते थे, और फिर नेताओं की एक परिषद भी उससे अलग होती थी। कुमरान, आपके पास पुजारी, बुजुर्ग और लोग थे। प्रेरितों ने बड़ों के बिना शासन नहीं किया। तो आपके पास प्रेरित और बुजुर्ग एक साथ हैं। वे जोरदार बहस में लगे रहे, ठीक वैसे ही जैसे यहूदी शिक्षक अपने स्कूलों में करते थे, लेकिन उन्होंने आम सहमति हासिल करने की कोशिश की। यहूदी रब्बियों के बीच बहुसंख्यक राय ने हमेशा दिन को आगे बढ़ाया। तो रब्बियों ने एक कहानी भी सुनाई, नेता रब्बियों ने एक कहानी भी सुनाई। संभवतः यह जेरूसलम चर्च में बहुत अच्छा नहीं हुआ होगा, और शायद कुछ लोगों का मन बदल गया होगा, लेकिन नेता रब्बियों ने दो रब्बियों की यह कहानी बताई जो बहस कर रहे थे, और एक रब्बी ने अधिकांश रब्बियों को आश्वस्त किया। यह बहुमत की राय थी रब्बी। और फिर स्वर्ग से एक आवाज आती है जो कहती है कि दूसरा रब्बी सही है। और ऋषियों ने शासन किया, ठीक है, नहीं, यहां तक कि स्वर्ग से एक आवाज भी रब्बियों की बहुसंख्यक राय को खारिज नहीं कर सकती। इसलिए यहूदी हलकों में बहुमत की राय हासिल करना बहुत महत्वपूर्ण था, कम से कम फरीसी हलकों के बीच, और फिर उन्हें बहुमत की राय का पालन करना होगा। यदि किसी अन्य पीढ़ी में बहुमत की राय भिन्न होती है तो आपको बदलना पड़ सकता है। लेकिन श्लोक 22 में वे सर्वसम्मति प्राप्त करना चाह रहे थे। इस बीच जेम्स की प्रतिक्रिया 1512 से 21 तक जेम्स को स्थानीय स्तर पर बहुत सम्मान दिया गया और जेम्स पद 13 से 16 तक बोलता है। हम गलातियों को लिखे पॉल के पत्र से भी जानते हैं कि जेम्स को बहुत रूढ़िवादी समुदाय के बीच सम्मान दिया जाता था, तो वह वही है जो एक पुल बन सकता है। प्राचीन अलंकार में वास्तव में उस व्यक्ति से अपील करना जिसे दूसरे पक्ष द्वारा सबसे अधिक सम्मान दिया जाएगा एक अच्छी अलंकारिक रणनीति मानी जाती थी। इसलिए यह आश्चर्य की बात नहीं है कि ल्यूक इस पर समय बिताता है। लेकिन 15:13-16 में जेम्स परमेश्वर के लोगों को अपने नाम के लिए राष्ट्रों से बुलाने की बात करता है। खैर, पुराने नियम में आम तौर पर यह शीर्षक इज़राइल पर लागू होता है। जेम्स इसे यहां अन्य जाति ईसाइयों पर भी लागू करता है और वह अपने तर्क को आमोस की पुस्तक पर आधारित करता है, जिसे वह पद 17 में उद्धृत करता है। वह आमोस 9 और पद 11 से डेविड के तंबू के बारे में बात करता है। डेविड का तंबू क्या है, इसके बारे में विभिन्न राय हैं। व्याख्या की एक परंपरा यह है कि यह मंदिर के आदर्श रूप की बहाली को संदर्भित करता है, जहां डेविड के दिनों में मंदिर में जिस तरह से पूजा होती थी उसी तरह से पूजा की जाएगी। एक इतिहास 25 भविष्यवाणी से प्रेरित आत्मा से प्रेरित पूजा। खैर, मैं निश्चित रूप से आत्मा प्रेरित पूजा में विश्वास करता हूं, मैं उसके पक्ष में हूं। लेकिन मुझे लगता है कि संभवतः इस पाठ का अर्थ उससे अधिक सामान्य है, क्योंकि वह डेविड के मंदिर के जीर्णोद्धार की बात नहीं करता है, वह दाऊद के तंबू के पुनरुद्धार की बात करता है। और शायद अमोस 9 में मुझे लगता है कि यह डेविड के घर को संदर्भित करता है जो इतनी जर्जर स्थिति में आ गया था। यह बिल्कुल वैसा ही है जैसे यशायाह उसी पीढ़ी में जेसी की जड़ से स्तंभ के बारे में बात करता है। डेविडिक घराने को शासन करने से अलग कर दिया गया था, लेकिन इसे बहाल किया जाएगा। दाऊद का घराना पुनः स्थापित किया जाएगा। इसलिए मुझे लगता है कि यह जिस बारे में बात कर रहा है वह डेविड की लाइन काट दिए जाने के बाद पुनर्निर्माण के बारे में बात कर रहा है। इसे मृत सागर स्क्रॉल में भी मसीहाई रूप से लागू किया गया है। खैर, आप उस पर जो भी विचार करें, स्पष्ट रूप से बहाली यीशु के राज्य से जुड़ी है, यीशु जो कर रहे हैं उससे। अध्याय 15 पद 17 और 18 आमोस 9 और पद 12 एदोम के अवशेष के बारे में बात करते हैं। लेकिन वर्तनी में थोड़ा बदलाव करके पुराने नियम के ग्रीक अनुवाद में आपके पास जो है वह एदोम के अवशेष से एडम के अवशेष तक जाता है, और इसलिए जेम्स वहां यूनानी मौजूद हैं, हेलेनिस्ट मौजूद हैं और इसमें यूनानी भी शामिल हैं। तो जेम्स शायद इस सेप्टुआजेंट का उपयोग कर रहा है, लेकिन भले ही वह सेप्टुआजेंट का उपयोग नहीं कर रहा हो, ल्यूक सिर्फ ग्रीक संस्करण का उपयोग करता है क्योंकि ल्यूक के लिए यही उपलब्ध है और यही उसके दर्शक समझेंगे। संदर्भ में समानता में हम देखते हैं कि एदोम के अवशेष भी राष्ट्रों से जुड़े हुए हैं, इसलिए एदोम राष्ट्रों का एक उदाहरण मात्र है, और इसलिए यहां हमारे पास ये राष्ट्र हैं, मानवता के अवशेष, एदोम के अवशेष, जिन्हें उसके नाम से बुलाया जाता है। वह भाषा जिसे परमेश्वर के लोगों का हिस्सा बनने के लिए लागू किया जा सकता है। अब आप यशायाह अध्याय 19 में ऐसा कुछ अधिक स्पष्ट रूप से देखते हैं। आप सपन्याह और जकर्याह में भी कुछ ऐसा ही देखते हैं, लेकिन विशेष रूप से यशायाह 19 में, जहां अश्शूर और मिस्र भी परमेश्वर के लोगों का हिस्सा बन जाएंगे। और मुझे लगता है कि यह उसी के बारे में बात कर रहा है जो हम नए नियम में देखते हैं, जहां आप अन्य जातियों को भी ईश्वर के लोगों में शामिल कर सकते थे, विश्वास के माध्यम से वाचा में शामिल हो सकते थे और यहूदी राजा यीशु मसीहा का अनुसरण कर सकते थे। तो वह जो सुझाव देता है वह यह है कि देखिए, हम उन अन्य जातियों के साथ टेबल फेलोशिप में विश्वास नहीं करते हैं जो शुद्ध नहीं हैं, लेकिन हमें उनसे अपने भोजन का दशमांश लेने की आवश्यकता नहीं है। हर कोई ऐसा नहीं करता, लेकिन आइए हम उनसे उन बुनियादी बातों की अपेक्षा करें जिनकी अधिकांश यहूदी लोग धर्मी अन्य जातियों से अपेक्षा करते हैं। उनका खतना कराने की जरूरत नहीं है। हमें उनके साथ टेबल संगति करने के लिए उन्हें धर्मांतरित बनने की आवश्यकता नहीं है। परमेश्वर के लोगों का हिस्सा बनने के लिए ठीक है, वह मुद्दा उस दिन हल नहीं होने वाला है, लेकिन वे किसी और चीज पर आम सहमति बनाने में सक्षम हैं। पॉल कहेंगे कि वे परमेश्वर के लोगों का हिस्सा बन जाते हैं। यह हम उनके पत्रों में देखते हैं। संभवतः यरूशलेम में मौजूद कुछ फरीसी इससे सहमत नहीं होंगे, लेकिन वे एक आम सहमति पर पहुंच सकते हैं जो चर्च की ऑर्थोप्रैक्सी से संबंधित है कि वे एक साथ कैसे रहते हैं। मूर्ति पूजा, अनैतिकता, खून और मांस ऐसी चीजें थीं जिनसे अन्य जातियों को दूर रहना था। ये नोआचाइड कानूनों के भाग थे। ये वे चीजें हैं जो लैव्य व्यवस्था 17 और 18 में देश में किसी अजनबी के लिए आवश्यक हैं। खैर, अंताकिया में वे भूमि पर नहीं हैं, लेकिन वे परमेश्वर के लोगों के बीच प्रवास कर रहे हैं। इसलिए उदार यहूदी स्थिति यह थी कि आने वाले विश्व में किसी भी धर्मी अन्य जाति का हिस्सा हो। यहां वे जो हल कर सकते थे वह टेबल फेलोशिप का मुद्दा है, और यहां तक कि कठोर फरीसियों को भी उन अधिकांश लोगों के साथ मिलना पड़ता था जो अधिक उदार थे, और उन्होंने बहुमत के विचारों को अमान्य करने का प्रयास नहीं किया। तो यरूशलेम में चर्च आम सहमति पर आता है। हो सकता है कि यह एकमत न हो, लेकिन यह आम सहमति है, और इसलिए वे 15:22 से 35 तक एक डिक्री जारी करते हैं। 15:22 में बाद में रब्बीनिक अकादमियों में बहुमत का दृष्टिकोण प्रबल हुआ। खैर, यहां आंशिक समझौते के कारण आम सहमति बनी, और यह समझौता अंताकिया में चर्च के पक्ष में है। उन्हें अपने अन्य जातियों का खतना करने की जरूरत नहीं है, जो वास्तव में अच्छा है, क्योंकि उन्होंने अपने चर्च को काफी छोटा कर दिया है, शायद विशेषकर पुरुष सदस्यों का। लेकिन किसी भी स्थिति में 15:23 वे पत्र की सामग्री के साथ एक पत्र भेजते हैं। ध्यान दें कि उनकी शुरुआत कैसे हुई। यह पत्र न्यू टेस्टामेंट के कुछ सर्वश्रेष्ठ यूनानी पत्रों में से एक है। जेम्स के पास कुछ बेहतरीन हेलेनिस्ट यहूदी होते जो उसके लिए उस चीज का निर्माण करने के लिए काम करते जो उसे सबसे अधिक पसंद आती, और सर्वोत्तम संभव ग्रीक का उपयोग करके गैर यहूदी ईसाइयों के लिए सबसे बड़ा सम्मान दिखाया होता। वे जातीय गैर यहूदियों को, जो यीशु में विश्वास रखते हैं, भाइयों और बहनों कहकर शुरुआत करते हैं। यह महत्वपूर्ण है। जो अभिवादन वे देते हैं वह मानक अभिवादन है जिसका उपयोग अधिकांश प्राचीन पत्रों में किया जाता था, जो पॉल द्वारा प्रयुक्त अनुग्रह और शांति के विपरीत था। अगर मैं पॉल के पत्रों के बारे में बात कर रहा होता तो मैं और अधिक विस्तार में जाता, लेकिन यह कुछ यहूदी तत्वों को एक साथ मिलाकर एक अधिक स्पष्ट आशीर्वाद है। लेकिन शुभकामनाएं मानक थीं, और फिर यह एक गोलाकार पत्र है। इसे इसके दूतों, जेरूसलम चर्च के दूतों द्वारा इन विभिन्न क्षेत्रों, सीरिया और सिलिसिया के क्षेत्रों में कॉपी और प्रसारित किया जाना है, जो फिर से एक सामान्य प्रांत था। यह व्यापक रूप से ज्ञात हो जाएगा। ल्यूक संभवतः पत्र की एक प्रति के बिना भी इसे लोगों की यादों से उद्धृत करने में सक्षम हो सकता है। 15:28 उन्होंने पत्र को यह कहकर समाप्त किया, यह हमें अच्छा लगा। खैर, इसका अनुवाद भी किया जा सकता है या इसका मतलब अक्सर प्राचीन फरमानों ग्रीक फरमानों में होता है, चाहे इसका समाधान हो। यूनानी फरमानों में इसका प्रयोग अक्सर नागरिक सभाओं में वोट के बाद किया जाता था। तो यह वास्तव में अंताकिया में चर्च के लिए अच्छी खबर है और यह गैर यहूदी मिशन के लिए अच्छी खबर है। लेकिन ईश्वर की इस कृति के तुरंत बाद जेरूसलम चर्च में आम सहमति बनाने के बाद, इस एकता के बाद जो शायद वास्तव में बहुत लंबे समय तक नहीं टिकी थी, लेकिन ल्यूक के लिए यह बात कहने के लिए काफी अच्छा था, चर्च ने इस अवसर पर यही निष्कर्ष निकाला। हम अधिनियम 21 में देखेंगे कि जेम्स और कुछ नेता फिर भी इससे सहमत थे, लेकिन जेरूसलम चर्च में हर कोई ऐसा नहीं कर सका क्योंकि चर्च अधिक से अधिक रूढ़िवादी हो गया था। लेकिन इस एकता को देखने के तुरंत बाद हम विभाजन देखेंगे, और विभाजन अधिनियम अध्याय 15 श्लोक 36 से 41 में मंत्रालय की साझेदारी के बिल्कुल केंद्र पर प्रहार करने जा रहा है, जिस पर हम अगली बार चर्चा करेंगे। यह एक्ट्स की पुस्तक पर अपने शिक्षण में डॉक्टर क्रेग कीनर हैं। यह सत्र 15 अधिनियम अध्याय 13 से 15 है।